चंदिया और मैं सोनू के घर जाते। सोनू चंदिया की नानी, झाड़ू वाली, वह रोटियां ला कर देती। उसके घर में रोटियों से भरी टोकरी होती, कई दिनों के टुकड़े, सूखे, फफूंद से भरे हुए, दुर्गंध भरे। वह कहती, खाना खाओ। टुकड़ों की रोट टोकरी हमारे सम्मुख रहती, हम भूखे होते, मैं और चंदिया खाते। टुकड़ों पर आई फफूंद को रुमाल से पोंछते और खाते। सोनू नानी के पड़ोस में जनाबाई नामक झाड़ू वाली थी। हम सोनू नानी के घर पहुंचते तो उससे बातें करते, गपशप होती शादी नौकरी आदि विषयों पर। मैं अक्सर कहता, मैं दहेज नहीं लूंगा, अंतरजातीय विवाह करूंगा। जनाबाई की बहन की एक बिन ब्याही लड़की थी। जनाबाई को मैं पसंद आ गया। उसने अपनी भांजी को मुझे बताने का निर्णय ले लिया। उस दिन दोपहर को एक मित्र के कपड़े पहनकर मैं गया, साथ में चंदिया भी था। मुझे खुशी हुई, होने वाले पत्नी के दर्शन की अपेक्षा थी। जनाबाई अपनी बहन की लड़की को ले आने वाली थी। मैं और चंदिया जब गए तब जनाबाई झाड़ू बना रहे थे। सोनू नानी नहीं थी। सोनू का लड़का चंदिया का चाचा था। वह शराब पिए बैठा था। हम उसके पास जाकर बैठ गए। चंदिया अपने काका से गपशप करने लगा। दारू की दुर्गंध आ रही थी। सोनू आई। चंदिया ने जैसे ही जनाबाई से पूछा कि लड़की क्यों नहीं आई, तो वह गुस्से से कहने लगी, हम खानदानी लोग हैं, हमारा खानदान बारहमासी है, हमें खानदानी लड़का ही चाहिए, हमें ऐसे वैसे लड़के नहीं चाहिए। लड़का ठीक है तो क्या हुआ, पर है तो अक्करमासी। मैं अक्करमासी हूँ, इसका पता उसे लग चुका था। जनाबाई की बातें कलेजे को छेद रही थीं, मानो भरे चौक में किसी ने चाबुक ही मार दिया हो। वहीं चंदिया का चाचा मायाप्पा बैठा था। उसे सब पता चल गया। उसने जनाबाई से कहा, हमारे बौद्ध धर्म में अक्करमासी बारहमासी नहीं है, मैं दूंगा इन्हें अपनी लड़की। मयाप्पा के वे शब्द मुझे संबोधि प्राप्त बुद्ध के शब्दों से भी अधिक सार्थक और मूल्यवान लगे। उस दिन शिवाजी मोरे मुझे बुलाने आया। मुझे खास व्यक्तिगत संदेशा होता तो शिवाजी मुझे अलग ले जाता। शिवाजी मेरे लिए पत्रकार ही था। मेरा संदेश घर पहुंचाता, घर का संदेश मुझे पहुंचाता। हम सब भगवान की तरह शिवाजी की प्रतीक्षा करते। शिवाजी की साइकिल की घंटी सुनाई देती तो हमारी बेचैनी कम हो जाती। उस दिन शिवाजी मुझे अलग ले जाकर धीरे से कहने लगा, पटेल के चंदू के साथ नागी की शादी हो गई है, तुलजापुर जाकर वे शादी कराए हैं। मैं चिंता मग्न हुआ, ठीक हुआ, पर यह शादी क्या अस्थाई है? भविष्य में नागी का क्या होगा? क्या दोनों सुख से रह सकेंगे? इस शादी को लेकर गांव में कैसी प्रतिक्रियाएं हुई होंगी? अगले सप्ताह संता माई मुझसे मिलने आई। नागी की शादी को लेकर वह कुछ भी नहीं बोल रही थी। मैं गांव ना पहुंचूं इसलिए वह आई थी। संताबाई बूढ़ी स्त्री, हमेशा तंबाकू खाने वाली, साड़ी चोली हमेशा फटी हुई। संता माई को हॉस्टल में के कमरे में कैसे ले जाऊं? संता माई अगर गोरी बेहतरीन कपड़ों में होती तो मैं कमरे पर ले आता। मुझे संता माई की लाज आ रही थी। सामने से जब कॉलेज के दोस्त दिखते तो मैं संता माई से दूरी रखकर चलता, जैसे कि यह दरिद्र स्त्री मेरी कोई लगती ही ना हो। संता माई मुझसे पूछ रही थी, मैं बोल नहीं रहा था। संता माई थाली होती तो मैं उन्हें अपने भीतर छिपा लेता। संता माई को मैं कलावती बुआ के घर ले गया। कलावती बुआ निवृत्ति मामा की पत्नी। हम जब भी उनके यहाँ जाते हंसकर स्वागत करती। हमसे वह कभी ऊबती नहीं थी। कलावती बुआ के कुल 7 लड़कियां थीं। लड़का नहीं हुआ इसलिए बुआ मामा दोनों नाराज रहते। संता माई बुआ के घर एक दिन रहकर चली गईं। दूसरे दिन मैं बुआ के घर गया। बुआ अपनी लड़कियों को दहलीज पर लिए बैठी थीं। मैं भी उनमें घुल मिल गया। बुआ ने मुझे कभी पराया नहीं माना। सुमन खेल रही थी, उसने बुआ से पूछा, माँ संता माई मुसलमान है क्या? उसका प्रश्न ठीक ही था, क्योंकि संता माई माथे पर बिंदी नहीं लगाती थी। पर बुआ को सुमन पर गुस्सा आया। संता माई को मुसलमान कहने का अर्थ दादा के साथ उनके संबंधों की चर्चा करना। बुआ ने सुमन को पीटा। इसमें सुमन की क्या गलती थी? आरक्षण की सुविधाएं बंद होने वाली हैं, ऐसी अफवाहें सुनकर मैं घबराता। आरक्षण रद्द करना है तो फिर हमें दलित स्थान मिल जाना चाहिए। आरक्षण की सुविधाएं हैं इसलिए तो मुझ जैसे लोग पढ़ पा रहे हैं। इस उम्र में जानवरों की रखवाली करना और माँ-पिता के जिम्मेदारी में हाथ बटाना जरूरी होता है। पर मैं इस समय कॉलेज में पढ़ रहा था। माँ-पिता रात दिन मेहनत मजदूरी कर रहे थे। किताब की प्रत्येक पन्ने पर उनमें श्रम, भूख और आशा को मैं देखता। संता माँ का जुगवा और दादा की हमाली को भूल नहीं पा रहा था। गांव में किसी ने माँ बहनों से छेड़खानी की है, यह सुनकर अध्ययन में मन नहीं लगता। इच्छा होती कि कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दूं और फावड़ा लेकर निकलूं, माँ बाप की सहायता करूं। 1978 में गांव की दलित बस्ती में जब हम दोनों ग्रेजुएट हो गए, तब हमारी उम्र के लड़के खेतिहर मजदूर के रूप में काम कर रहे थे। आरक्षण के विरोध में नारा लगाने वालों से यह प्रार्थना है कि वे पहले जातीयता को खत्म कर दें, वे खुद अछूत का जीवन जिए, गांव के बाहर आकर झुग्गियों में रह लें। शराबी पिता के पैरों के निकट भूख से छटपटाते हुए अध्ययन करें और तब यह शिकायत न करें कि अन्याय हो रहा है। सवाल है कि मनुष्य के रूप में हमें स्वीकार क्यों नहीं किया जाता? इसी कारण तो स्वर्ण सवर्ण हमें शत्रु लगते हैं। लड़के मुझे अरे अबे से संबोधित करते हैं और मैं उन्हें आप कहता हूँ। मेरी जिह्वा के आसपास अगणित मनु के कानून चिपकाए गए हैं। पत्नी को पीटने वाला हाथ यहाँ अलबत्ता कमजोर पड़ जाता है। गर्मियों की छुट्टियों में जब मैं गांव आता तो बहुत उब जाता। झोपड़ी के आसपास की गंदगी असह्य हो जाती। ऊसर गांव में मन नहीं लगता, मैं उदास हो जाता। कभी कभार शराब पीने जाता। नागी चंदू अब वैवाहिक जीवन जी रहे थे। चंदू के पिता ने उसे घर से बाहर कर दिया था। चंदू हमारे ही घर रह रहा था। खाना अलबत्ता वह अपने घर जाकर खा लेता। नागी के लिए दो चार रोटियां चुरा कर ले आता। नागी गर्भवती थी, निर्मी 5-6 महीने में बड़ी हो जाएगी। उसके विवाह का भी प्रश्न था। संता माँ मेरे विवाह के लिए आग्रह कर रही थी। मैं जब सोलापुर के लिए निकला तब संता माँ की आंखें भर आती, मेरे लिए तेल चुपड़ी चपातियां बनाती। दादा हमाली के पैसे बचाकर मुझे जेब खर्च के लिए देते। निर्मी वनी बस में घुसकर जगह पकड़ लेती, मैं खिड़की के पास बैठता। संता माँ मसा माँ खिड़की के पास ही आकर बाहर खड़ी होती। बस में भीड़ होती, दादा ऊपर सामान चढ़ाते, कंडक्टर टिकट देता। संता माँ मुझे वास्तविकता का एहसास दिलाती। शराब का ग्राहक पहुंचा है इसलिए मसा माँ निकल जाती। दादा नाम पट बदलते, पानी डालते, हमाली के पैसे मांगने बस में आते, मेरे पास आकर रुक जाते। नीचे उतरो, समय हो गया है, कंडक्टर चिल्लाता। दादा मुझे विदाई देते, कहते हमारी फिक्र मत किया करना, अध्ययन कर, किसी बात की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। बस के यात्री मेरी तथा दादा की ओर देखते रहते। मुझे शर्म आती, हमाल के नाती के रूप में लोग मुझे पहचानते। कंडक्टर जल्दी सीटी दे दे, बस निकले, ऐसा लगता। फटेहाल अवस्था में खड़े संता माए निर्मी वनी बस के हिलने की प्रतीक्षा में होती। अवरुद्ध कंठ के कारण आंखें भर आती। सीटी कंडक्टर सीटी देता, बस निकलती। दादा संता माए निर्मी वनी के हिलने वाले हाथ बहुत देर तक मेरे पीछे पीछे रहते। मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का नाम दिया जाए, इसलिए दलित पैंथर का एक बहुत बड़ा मोर्चा विधानसभा पर निकाला गया था। इस मोर्चे के लिए महाराष्ट्र से हजारों पैंथर आ चुके थे। सोलापुर से 1,000 पैंथर बंबई के लिए निकले। विराट मोर्चा सूर्य की तरह दिख रहा था। संघर्ष और संघटना का एहसास हो रहा था। हमारे मोर्चे पर पुलिस की लाठियां बरसी। बंबई में हो हल्ला हुआ। उनके कार्यकर्ताओं की धरपकड़ हुई। हमारे तो बुरे हाल हुए। सभी ओर से पुलिस का कड़ा नियंत्रण था। दूसरे दिन मैं रानी लक्ष्मीबाई सब्जी मंडी पर गया। वह चंदिया लक्ष्या थे। बंबई में पहली बार आया था। चंदिया लक्ष्या को ढूंढते मंडी में रुका, पर उन्हें कैसे पहचानता। मृत्यु पिता की मृत्यु के बाद चंदिया लक्ष्या रोजगार की तलाश में बंबई चले गए थे। उनके विवाह भी हो गए थे। चंदिया बाप बन चुका था। वे भाई खला में रहते थे। रानी लक्ष्मीबाई मंडी में वे दोनों ठेला खींचते, हमाली करते। मैंने उन्हें बचपन में ही देखा था। वही चेहरा स्मृति पटल पर था। ठेला खींचने वाले प्रतीक की ओर उसी दृष्टि से मैं देख रहा था, पर पहचान नहीं पा रहा था। एक दो से पूछताछ भी की, पर कुछ पता नहीं चला। चंदिया लक्ष्य से भेंट नहीं हो सकी। भेंट होती तो क्या वे पहचान सकते? क्या भाई की तरह व्यवहार करते? उम्र के 25 वर्ष अब बीत गए हैं, पर मैं अपने भाइयों को पहचान नहीं पाता, पिता को भी नहीं। वे सारे जीवित हैं। संयोग से अगर हम सब एक ही बस से सफर करते तो भी शायद एक दूसरे को नहीं पहचान पाते। यह यात्रा ही विचित्र है। हमारी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। हम भूल भुलैया में है शायद। धृतराष्ट्र गांधारी की तरह, कर्ण कुंती की तरह, एकलव्य अश्वत्थामा की तरह। रणभूमि पर पिता, चाचा, बहन, भाई, माँ सब हैं। सब हैं इसका एहसास भी है, फिर भी हम लड़ रहे हैं खुद से ही, शत्रु समझकर। क्योंकि हमारे जीवन के सूत्र नियति के हाथों में है। हम पराजित हैं, फिर भी लड़ रहे हैं अगली पराजय के लिए। किसी और के गुलाम न बने इसलिए। शिवाजी मोरे उस दिन फिर एक संदेशा लाया था। संता माय चंदिया की बहन का हाथ मेरे लिए मांगने वाले थे। चंदिया और मैं पहली कक्षा से बीए तक वर्ग मित्र थे। एक थाली में खाने वाले, एक लोटे का पानी पीने वाले, एक ही बिस्तर पर सोने वाले। चंदिया की माँ मुझ पर कितना स्नेह जतलाती। मित्र की बहन पत्नी के रूप में मिलेगी, इसकी मुझे कितनी खुशी हुई। पर दूसरे दिन शिवाजी ने विपरीत खबर दी। कलेजे को छेदने वाली थी यह खबर। चंदिया के माँ पिता ने मुझे नकारा था। मैं अक्रमाशी था ना। यहाँ के मनुष्य मनुष्य की अपेक्षा रूढ़ियों पर अधिक प्रेम करते हैं। यहाँ की संस्कृति से मैं द्वेष करता हूँ, रूढ़ियों से चिढ़ता हूँ। पर सिवा द्वेष और चिढ़ने के मैं कर भी क्या सकता हूँ? इन सारी स्थितियों को चुपचाप झेल लेता हूँ। इस अपमान को भी पी गया। विवाह मुझे बेमतलब का लगने लगा। किसी लड़की को देखने जाने का अर्थ था तेजाब शरीर पर छिड़क लेना। इच्छा ही नहीं होती थी। बजाय इसके जिंदगी भर अविवाहित रहना ठीक लगता। चंदिया की दादी तुकाव्वा आराधिका थी। ईश्वर की संतति समर्पित करने की परंपरा केवल पिछड़ी जातियों में ही है। अंबाबाई, यल्लामा, लक्ष्मी, खंडोबा, ये महार मातंगों के आराध्य दैवत। मसोबा मरी आय, खोकल्या आई, सटवाई, नामों की सूची बढ़ाई जा सकती है। किसी के संतति नहीं हो रही हो तो ईश्वर से मनौती मांग लेते। अंबाबाई से मनौती मांगी। लड़की हुई तो उसका नाम अंबाबाई रख दिया और लड़का हुआ तो अंबादास। और फिर इन बेटे बेटियों को आराधक के रूप में अंबाबाई के लिए देते हैं। लक्ष्मी से मनौती मांगी। बेटी हुई तो लक्ष्मी और बेटा हुआ तो लक्ष्मण। लक्ष्मी को पोतराज के लिए छोड़ दिया जाता है। खंडोबा पर भी बेटे बेटियां छोड़ने का इधर रिवाज है। बेटे को वाद्या तथा बेटी को मुरली कहा जाता है। यल्लाम्मा के जोगत्या और जोगती होते हैं। मैंने कभी ब्राह्मण पोतराज या लिंगायत वाद्या को देखा नहीं है। दलितों में ही ये रूढ़ियां क्यों? भगवान के नाम पर छोड़े गए स्त्री पुरुषों के विवाह नहीं होते। उनका विवाह तो ईश्वर से हो जाता है ना। देवदासी अपनी मर्जी से पुरुष के साथ जी सकती है। देवदासी की संतान को अक्कर्माशी कहते हैं। उन्हें बलुत्तम का अधिकार नहीं होता। ईश्वर के नाम पर भीख मांगकर उन्हें जीना पड़ता है। आराधिका का अर्थ है अम्बा बाई की साधिका भक्तिन। उसे तुलजापुर ले जाकर गुरु बना देते हैं। गुरु हाथों में परड़ी पोथी देता है। उससे शपथ ले लेता है, सच कहो, झूठ न बोलो, बेईमानी न करो, और वह स्त्री आराधिका के रूप में जीने लगती है। संता माँ के हाथ में भी परड़ी है। चंदा माँ की सहेली सटवा माँ के हाथ में भी परड़ी है। चंदिया का चाचा ज्ञानबा मामा के हाथ में भी परड़ी है। परड़ी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलती जाती है। हमारी दलित बस्ती जैसे तुलजापुर को जाती है, वैसे चिवरी की लक्ष्मी को भी जाती है। मैं एक बार अंबाबाई के विरोध में बोल गया तो संता माई लाल पीली हो गई थी। उन्होंने मुझे शाप दिया था कि तू अंबाबाई के खिलाफ बोलता रहा तो तेरा कभी ठीक नहीं होगा, तेरे बदन में कीड़े पड़ जाएंगे और उसी हाल में तू मरेगा। दलितों को हमारी इस बस्ती में आराधकों के तीन घर हैं। पांच छह पोतराज हैं। शंभू बाप का पहला लड़का आप्पा शाह पोतराज था, पर वह मर गया। भगवान के नाम पर छोड़ा हुआ आदमी भी मर जाता है। आप्पा शाह मर गया, इसलिए संगू को पोतराज बनाया गया, पर संगू ने सिर के बाल काट दिए। भगवान के बाल काट दिए, इसलिए उसको बहुत अपमानित किया गया। संगू को दौरे पड़ने लगे। उसको जब दौरे पड़ते तो लोग कहते, लक्ष्मी उसको छल रही है। चिवरी की यात्रा को हम प्रतिवर्ष जाते। चिवरी के पहाड़ पर जाते समय संता माई के शरीर में देवी आती। वह चिल्लाती, भागती। देवी के मंदिर में जाकर दर्शन तक वह कभी कहीं भी रुकती नहीं थी। तेजी से भागती, उनके पीछे दादा, निर्मी और मैं भागते। हम थक जाते। चिवरी की लक्ष्मी का मंदिर अनेक छोटे बड़े पहाड़ों के बीच में है। यह पहाड़ी प्रदेश यात्रा के दिनों भीड़ से भर जाता है। सभी और बैलगाड़ियां, हजारों पोतराज डफली बजाते घूमते रहते हैं। उनका रंगा हुआ चेहरा और दौड़ो दौड़ो के उनके नारे भयावह लगते, मन कांपने लगता। हजारों मुर्गियों, बकरियों और बैलों की यहां बलि दी जाती। देवी के सम्मुख खून का कीचड़ तैयार होता। मंदिर के प्रांगण में पोतराज डफली हो जाते आते और उनकी इस ताल पर 10-12 औरतें बदन में देवी आने से चिनास्ती रहती। उनकी यह विद्रूप हंसी, चिल्लाना, घूमना, शरीर का फैलना, सब कुछ भयंकर लगता। कोई बाजा बजाने वाला अगर रुक जाता तो औरतें उसे परेशान करती कि वह बजाता रहे। औरतें गाते बजाते दंडवत डालती। पोतराज के यहाँ संस्कार होते। देवी के मंदिर में छोटे बच्चों को नीचे फेंक दिया जाता। लोग उन्हें नीचे चादर में बराबर झेलते। यह भी एक प्रकार की मनौती होती। कुछ लोग बच्चों के बाल उतारने आते, कोई नाम रखने आते। अनेक मनौतियाँ यहाँ पूरी की जाती, नई मनौतियाँ मांगी जाती। सभी ओर चूल्हे जलते, बकरियों के छीले हुए शरीर बैलगाड़ी पर टंगे रहते हैं। चिवरी का पटेल यात्रा के पहले दिन प्रातः आकर अपनी खानदानी तलवार से बकरी की बलि देता, उसके बाद ही अन्य बकरे कटते। पंक्ति के में पड़े हुए बकरों के सिरों को देखना महाभयंकर लगता। खाल निकालकर जिंदा बकरे को देवी के सम्मुख चलाया जाता। नई नई औरतें तेजी से दौड़ती हुई मंदिर की ओर लगातार भागती, उनके पीछे उनके रिश्तेदार दौड़ते। देवी की भभूत लगाने के बाद ही वे होश में आती, अगर होश में नहीं आती तो उनके बदन पर देवी नहीं भूत है ऐसा कहा जाता। दत्तू मामा की पत्नी के भी शरीर में देवी आती। जब कभी ऐसा होता तो दत्तू मामा पत्नी के पैर को बांधते और खूब पीटते। गदेर के पटेल की रखैल रंडी बहुत खूबसूरत थी, गोरी थी, बाघ की जिह्वा की तरह। उसकी रखवाली के लिए 5-6 मुस्टंडे थे। उसके शरीर में देवी आती तो वह बहुत हो हल्ला मचाती। उस हालत में जब वह घूमती थी तब उसके साथ डफली बजाना बहुत मुश्किल होता था। उसकी कमर पकड़ने वाले परेशान हो जाते। जब वह नाचती तो उसकी धोती खुल जाती। धोती खुल ना जाए इसलिए मुस्टंडे पटलियां बांधने की कोशिश करते। पटलियां बांधते समय मुस्टंडे जानबूझकर अपने हाथ काफी नीचे तक ले जाते, एकदम योनि तक। यह स्पर्श उसके ध्यान में आ जाता और वह घूमते हुए उस मुस्टंडे को गालियां देती। यह कहानी दत्तू मामा हमें सुनाते। मटन पकता, हम सब बैलगाड़ी के नीचे बैठे रहते और वह कहानियां सुनते। हम खूब हंसते। लक्ष्मी की यात्रा संपन्न होते ही दूसरे दिन हम सब लोग वहां से निकल जाते। एक भी नहीं रुकता, क्योंकि सबका यहाँ विश्वास था कि दूसरे दिन वहां भूतों का मेला लगता है। रात में भूत प्रेत इकट्ठे होते हैं, बेताल की पालकी निकलती है, बलि दिए गए जानवरों का वे रक्त चाटते हैं, नाचते हैं। अगर कोई मनुष्य दिखलाई देता तो उसकी गर्दन नोचते हैं। इन बातों पर मैं कतई विश्वास नहीं कर रखता। तब संता माँ मुझे एक घटना सुनाती। एक बार तुझ जैसे ही तीनों ने ठान लिया कि भूतों का मेला देख ही लेंगे, वे वहां रुके गए। एक पेड़ पर जा बैठा, दूसरा मंदिर के में छिप गया, तीसरा मंदिर के पीछे छिप गया। रात के 12 बजे भूतों की पालकियां आने लगी। पहाड़ पर सभी ओर दिए ही दिए दिखाई देने लगे। पेड़ पर चढ़ा आदमी डर के मारे नीचे गिर गया, मर गया। भूतों ने शोर मचाया, उन्हें आदमी की गंध आ गई थी, उसे मारना चाह रहे थे। देवी ने कहा, पेट के पास का खाओ, पीठ के पास का नहीं। मंदिर में बैठा आदमी यह सुनकर डर के मारे मर गया, क्योंकि वह मंदिर के पेट के पास था। मंदिर के पीछे जो था वह अलबत्ता बच गया। संता माँ यह कहानी ऐसे कहती जैसे उन्होंने यह खुद अभी अभी देखा हो। मैं कहता, मुझे पिस्तौल दो, मैं रुक जाता हूँ वहां। मेरे गांव में भूत साधकों के 3 घर हैं, 2 धन नगरों की बस्ती में, 1 महारों की बस्ती में। ये तीनों त्योहारों पर ढोल बजाते हैं। भूता पुजारी के शरीर में भगवान आते हैं, सारा गांव इकट्ठा होता है। भूता पुजारी पूरा भविष्य उस अवस्था में बतला देता है। फसल, वर्षा, पाप पुण्य, वस्तुओं के भाव, दुनिया की स्थिति आदि आदि भविष्य की बातें बतला देता है। दूसरे दिन भूता पुजारी को कोई तंबाकू तक नहीं देता। साक्षात भगवान का निवास जिसके शरीर में होता हो वह 1 कप चाय का भी हकदार नहीं होता। अमावस्या पूर्णिमा को इस बस्ती में भूत प्रेत पिशाच बाधा के उपचार किए जाते हैं। जिन्हें पिशाच बाधा होती है वे दूर दूर से हमारे गांव में आते हैं। काफी देर तक ढोल बजाया जाता है। जिन्हें पिशाच बाधा होती है वे चिल्लाने लगते हैं। भूता पुजारी उल्टी छड़ियां मारता है। अमावस्या भयावह लगती। चौपाल पर छोटे छोटे बच्चे भूता पुजारी का खेल खेलते हैं। किसी एक के शरीर में भगवान आते हैं, वह भूता पुजारी की नकल पर नाचता है, दो लड़के उसकी कमर पकड़ते हैं, कुछ ढोल पीटने का अभिनय करते हैं। मैं उस खेल को देख रहा हूँ, क्रिकेट खेलने वाले शहर के भी बच्चे किधर और ये किधर, यह पीढ़ी पर बात क्यों हो रही है? शहर देहात में दो ध्रुवों का अंतर क्यों है? कब सुधरेंगे हमारे देहात? गांव की यह जाति बिरादरी, यह वर्ण व्यवस्था, ये अंधश्रद्धालुजन कब समझेंगे वे कि उन्हीं की उंगलियां उन्हीं की आंखों में डाली जा रही हैं? क्यों नहीं फटता पड़ोस का यह तालाब और क्यों नहीं बह जाता मेरा यह गांव उसमें? कोंडी बाप मशा का दादा, हमारी महार बस्ती का निर्विरोध पंच अपना नाम भी पढ़ लिख नहीं सकता। शिवराम के होटल के बाहर स्थित कप सौसर लेकर चुपचाप चाय पी लेता है। सवर्णों द्वारा फूंकी गई आधी बीड़ी पीकर उन्हें श्रद्धापूर्वक जोहार कहता है। उसे क्या पता सत्ता विकेंद्रीकरण पंचायत राज, जिन्हें मत पत्रिका भी पढ़नी नहीं आती वे शासन करने वाले कब बनेंगे? एक कप चाय पर यहाँ मत पत्रिकाएं सील बंद हो रही हैं। किस सत्ता के लिए, किस प्रकार के परिवर्तन के लिए? मेरे गांव में विट्ठल सप्ताह बहुत ही बेहतरीन होता है। पंढरपुर की तरह हमारा गांव वार करियों से भर जाता। भारुड, अभंग, गोलणी, करताल, मजीरा, मृदंग के निनाद से गांव डूब जाता। उस दिन शिवाजी मोरे ने मुझे संदेशा दिया, सप्ताह को आने के लिए कहा। उस समय मेरे कमरे में 5-6 मित्र थे, उन्होंने भी इच्छा व्यक्त की गांव आने की, और हम सब इस गांव सप्ताह और हम सब इस सप्ताह गांव की ओर साइकिल से निकले। मेरे घर का मतलब था बस स्टैंड। स्टैंड पर स्थित बेंचों पर मैंने दोस्तों को बैठा दिया, चाय पिलाई। वे कहने लगे घर चलो, पर मेरा घर था ही कहाँ। पिता कोठी में रहते हैं, माँ झोपड़ी में, मैं सड़क पर स्टैंड के पीछे खुले में। नानी ने रसोई बना दी, एक थाली में हम पांचों ने खाना खाया। नानी हमें सात दोस्तों वाली कहानी सुना रही थी। रात में हम भारुड सुनते रहे, पर दोस्त उसमें नहीं रम रहे थे, उन्हें नींद आने लगी। हम स्टैंड पर आए, संतामाय दादा सो चुके थे, उन्हें जगाया। बस स्टैंड पर गुदड़ी फैला दी और दोस्तों से सोने के लिए कहा। स्टैंड पर काफी लोग थे, उनके मजाक चल रहे थे। अड़ोस पड़ोस के गांव से सप्ताह के लिए वे लोग आए हुए थे। स्टैंड पर वे गपशप करते थे, मैं दोस्तों को लेकर लेट गया, पर नींद किसी को भी नहीं आ रही थी। दोस्त सोनवड़े लोगों को डांट रहा था, चुप रहने के लिए कह रहा था। लोग थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाते, फिर जोर शोर से बातें करते, हंसते। सोनवड़े ने फिर डांटा, बाद में वह गालियां देने लगा। थोड़ी देर बाद झगड़ा शुरू हो गया। उनमें से एक यात्री बड़ा तेज था, कहने लगा तुम्हारा घर नहीं है क्या, यहाँ स्टैंड पर सो रहे हो? घर पर जाकर सो जाओ आराम से, यह सार्वजनिक जगह है, हम बातें करेंगे ही, यह सरकारी जगह है। संतामाय बीच बचाव के लिए उठी, फिर सब खामोश हो गए। दूसरे दिन दोस्त सोलापुर चले गए। दोस्तों की असुविधा के लिए मुझे बहुत खेद हुआ, दरिद्रता का एहसास तीव्र होने लगा। उस दिन संतामाय ने मुझे बहुत देर तक चूल्हा नहीं सुलगाया। प्लीज रिपीट, उस दिन संतामाय ने मुझे देर तक चूल्हा नहीं सुलगाया। रिपीटेड अगेन। उस दिन संतामाय ने बहुत देर तक चूल्हा नहीं सुलगाया। बची हुई एक रोटी हम तीनों कैसे खाते? मुझे तो भूख लगी थी। संतामाय ने आटे का डब्बा दिखाया, कहने लगी आटा है, बाद में रोटी बनाऊंगी, तू खा ले, हमारी चिंता न कर। मैंने डब्बा उठाकर देखा, वजनदार लगा, लगा कि अनाज पीसकर लाई होंगी, इसलिए मैंने बची हुई रोटी खा ली। पेट भर पानी पी गया। संतामाय बाहर निकल गई, मैंने आटे का डब्बा खोल कर देखा, भीतर आटा नहीं था, थे दो पत्थर। डब्बा वजनदार लगे इसलिए पत्थर रख दिए गए थे। निर्मी विवाह योग्य हो गई थी। मेरी भी शादी करनी थी, पर शादी कैसे होगी? कौन संबंध जोड़ेगा हमसे? शराब पीने के लिए कोई आता तो माँ निर्मी वनी के लिए कहती, इनका विवाह करना है, कहीं कोशिश कीजिए। शराब के नशे में लोग कुछ भी बोलते। भोली भाली माँ बड़ी आशा से उन्हें एक कप शराब फोकट में दे देती। नशा अधिक होता वे मुझे नजदीक बुलाते, कहते, तू चिंता मत कर, तेरी शादी हम करेंगे, तुझे नौकरी दिलवाएंगे, हमारे कई परिचित हैं, पर मैट्रिक पास होना जरूरी है। मैं उनसे कहता, मैं बीए पास हूं, अब एमए कर रहा हूं। पर शराबी नशे में कहते, एमए बीए बहुत बेकार है, उसका कोई उपयोग नहीं है, तू केवल मैट्रिक पास होकर हमारे पास आ जा बस। मसा माँ की एक सहेली थी मातंग समाज की। पटेल से उसके एक लड़की हुई थी। वह डफली पर गाना गाती घूमती। माँ काका कहते कि उसके साथ तेरी शादी कर देंगे, पर कुछ हो न सका। शराब पीने के लिए कोई ग्राहक आता तो पूछती, आपके गांव में पटेल की रखेल के लड़के हैं क्या लड़की के विवाह के लिए? लड़की का जन्म जैसे हुआ वैसा ही जन्म किसी लड़के का हुआ होगा, तो उसके साथ ही तो सगाई होगी, छोटे को छोटे ही मिलेंगे, दूसरे कौन? ऐसे समय तुझे लड़की दे दूंगा, ऐसा कहने वाले शराबी मायाप्पा की याद आती। उसकी लड़की कैसी होगी, मैं सोचता। मायाप्पा कांबले जी प में सेवक था। उसके अरुण, हरि, राहुल और सुनील नामक चार लड़के तथा कुसुम नामक एक बेटी थी। मैं चंदिया के साथ हमेशा सोनू के लिए घर जाता। एक बार मयाप्पा कांबले सोलापुर आया था। उसके पास शराब के लिए पैसे नहीं थे, मैंने उसको शराब पिलाई। उसके पास बारशी लौटने के लिए पैसे नहीं थे, टिकट के लिए पैसे भी मैंने दिए। बारशी लौटने के बाद मनी ऑर्डर करूंगा, ऐसा उसने कहा। पैसे उसने नहीं भिजवाए, उल्टे अगले सप्ताह वह फिर आया 100 रुपये उधार मांगने के लिए। मेरी लड़की बड़ी हो गई है, उसकी शादी करनी है, पैसे नहीं है, उसने कहा। उसी दिन मुझे शिष्यवृत्ति के पैसे मिले थे, मैंने रुपये दे दिए। अगले महीने फिर मायप्पा कांबले की आने की सूचना मिली। मैं हॉस्टल से निकल गया, भटकता रहा, क्योंकि उसे शराब पिलाना, रुपये उधार देना हर बार संभव नहीं था। पर दूसरे दिन वह बराबर टपका। मुझे लगा कि वह प्रतीक्षा कर लौट गया होगा, पर नहीं, वह मुझे मिला और मेरे विवाह की बात उसने निकाली। वह अपनी लड़की मुझे देना चाहता था। लड़की न देखते हुए ही मैंने हाँ कर दी, क्योंकि मुझे कोई लड़की दे ही नहीं रहा था। मेरा विवाह कुसुम के साथ तथा बहन निर्मी का विवाह कुसुम के भाई के साथ निश्चित हुआ। शरण रंडियों के पास जाता है, शराब पीता है, इसलिए कुसुम के साथ इसका विवाह न किया जाए, ऐसा आग्रह उसका भाई कर रहा था। चंदिया के माँ पिता ने भी इस विवाह का विरोध किया, क्योंकि हम अकर्माशी हैं, हमारे साथ संबंध न किया जाए, ऐसा उसका कहना था। पर मयाप्पा कांबले ने किसी की नहीं सुनी और शादी पक्की कर दी। बारशी वाले वालों ने विवाह के निमंत्रण पत्रिका पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर छापी, तो काका ने शिव पार्वती की तस्वीर छाप दी। शादी हमारे गांव में होने वाली थी। दीवारों पर जय भीम, नमो बुद्धाय न लिखते हुए केवल ओम लिखा जाए, ऐसा काका का कहना था। 24 फीट लंबा चौपाल मैंने और निर्मी ने गोबर से लीप दिया। सहायता के लिए कोई भी नहीं आया। हथेलियों पर फफोले पड़ गए, मैंने ही फरारे लगाए, बुद्ध फूले आम्बेडकर की तस्वीरें लगाई। शादी बौद्ध पद्धति से हो, यह मेरा आग्रह था, तो काका हिंदू पद्धति का आग्रह कर रहे थे। गांव वाले इकट्ठे हो गए, निर्धारित समय टल गया, देर से शादी हुई। मैं मंगलसूत्र बांधने की तैयारी कर रहा था कि भीड़ में से काका के गुरु आए और उन्होंने मंगलाष्टक शुरू किया। अक्षतों की अचानक वर्षा हुई। क्षण भर में सारी भीड़ निकल गई। हाथ में माइक लेकर मैं तल्लीनता से बोलने लगा, मेरी शादी अभी नहीं हुई है। हिंदू धर्म से की गई शादी मुझे मान्य नहीं है। हम बौद्ध पद्धति से विवाहबद्ध होने वाले हैं, इसलिए हम पर जिनका स्नेह है वे यहाँ से लौटे नहीं। मेरी विनती किसी ने नहीं सुनी। अतिथि विस्थापितों की तरह खड़े थे। काका, दादा, संतामाए, मसामा कोई भी नहीं थे वहां। दादा स्टैंड पर हमाली कर रहे थे। मासामा घर पर ग्राहकों को शराब बेच रही थी और मैं कुसुम के गले में पुष्प हार डाल रहा था, हरी निर्मी के गले में। विवाह में कलावती बुआ ने मुझे स्टेनलेस स्टील का एक लोटा भेंट में दिया था। वह लोटा मुझे कितना महत्वपूर्ण लगता। जर्मन के बर्तन तक जिनको प्राप्त नहीं हुए उन्हें स्टेनलेस स्टील का बर्तन पहली बार मिला था। संता माँ यह लोटा गुप्त संपत्ति की तरह कपड़े में बांधकर बक्से में रख देती। जब घर पर कोई आता तभी उसे बाहर निकालती, उस लोटे में उसे पानी देती। खाना खाते समय सुनी उस लोटे को पास में लिए बैठी थी। मुझे बड़ा गुस्सा आया। जर्मन के लोटे से पानी पीना छोड़, स्टील के लोटे से पानी क्यों पिए? मैंने वह लोटा उसे छीन लिया और बक्से में रख दिया। शादी हुई पर लड़की को वे ससुराल नहीं भेज रहे थे। सास कहती, तुम्हारे घर का चाल चलन ठीक नहीं है। घर में शराब का धंधा है, 10 तरह के लोग आते हैं। मेरी लड़की बिगड़ जाएगी, जब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तब भेजूंगी। तब तक लड़की को विदा नहीं करूंगी। अब मेरी नौकरी कब लगेगी? नौकरी अगर नहीं मिली तो? हमारे घर के चाल चलन ठीक नहीं है तो फिर शादी क्यों की? मैं काफी छटपटाता। मसामा कहती, तू उसे कभी लेकर मत आ, पड़ी रहने दे, मायके में ही सड़ने दे। संता माय कहती, शादी हुई है ना, एक बार उसके पास सोकर आ जा। मैं बारशी जाता। ससुर हर बार शराब पीकर झगड़ता। सास गालियां देती, तुम सड़े हुए लोग हो, हम लोगों ने तुम्हें शुद्ध किया है, सड़क पर तो पड़े हुए थे। मुझे घर से बाहर करती। सास बड़ी भयंकर औरत थी, हमेशा मुझे अपमानित करती। मुझे उन दोनों पर गुस्सा आता, मैं उन पर झल्लाता। अड़ोस पड़ोस के लोग इकट्ठे होते, तमाशा देखते। पत्नी को वे लोग भेज नहीं रहे थे। बारशी जाता तो घर के बाहर सुलाते, मैं भड़क उठता। रात में सास को उठाता, रंडी के यहाँ जाने के लिए पैसे मांगता, वह और चिढ़ती। मैं कसमसाता हुआ सोता। इच्छा होती कि सास को ही भगा ले जाऊं। मेरा साला दलित पैंथर का कार्य करता था। चौक में वह गपशप मारता खड़ा था। पैंथर के कार्यकर्ताओं से उसने मेरी पहचान करा दी थी। हम सब मूवमेंट पर बोलने लगे। इतने में दादा का मामा गुलाम हुसैन हवलदार वहां से गुजर रहा था। उसने मुझे देखा, साइकिल रोकी, मुझसे बातचीत करने लगा, घर जाने के लिए कहा, चला गया। पैंथर मित्र ने पूछा, तुम्हारी इसकी जान पहचान कैसी? मैं अनायास बोल गया, यह मेरे रिश्तेदार है। पैंथर्स के मन में प्रश्न पैदा हुआ, गुलाम हुसैन हवलदार मुसलमान है, लिम्बाले का रिश्तेदार कैसे? सभी खामोश हो गए। शाम के समय मेरा ससुर काफी शराब पीकर आया और मुझसे झगड़ने लगा। सास भी उससे मिल गई, हम में झगड़ा शुरू हो गया। मेरी पत्नी परेशान हो उठी। अक्करमाशी बारहमाशी उसकी समझ में नहीं आता। मयाप्पा कामले कहने लगा, मेरा लड़का दलित पैंथर का अध्यक्ष है, सभी और उसकी इज्जत है। उस मुसलमान को तुम अपना रिश्तेदार बतलाते हो, हमारी बेइज्जती हो रही है। हमने तुम्हारी असलियत को सबसे छिपाया था, थोड़ी इज्जत से जियो। अगर संभव नहीं तो मेरे घर पर पैर न रखो। मुझे लगा मुझे कोई दाग रहा है। मुसलमान रिश्तेदार हो नहीं सकता, उसका धर्म अलग, जैसे वह कोई अलग जानवर ही हो, हमसे भिन्न जानवर। औलाद औलाद में इतना फर्क। कुसुम को लेकर मैं निकला पर मयाप्पा कामले बीच में आया। कुसुम के हाथों की थैलियां उसने सड़क पर फेंक दी और जबरदस्ती खींचकर वह उसे भीतर ले जाने लगा। कुसुम रोने लगी, शरण शरण कहकर मुझे पुकारने लगी। मैं दौड़ता गया और ससुर की गर्दन पकड़ ली, तब उसने कुसुम को छोड़ दिया। मैं पत्नी को लेकर स्टैंड पर गया, वहां मेरा साला साइकिल लेकर उपस्थित था। मैं यह सब सह रहा था क्योंकि उस घर में मेरी बहन दी गई थी। निर्मी अपनी ससुराल में खुश थे। नागी को चंदू से गर्व रह गया था। नागी चंदू भी अब सुख से जी रहे थे। वनी साल दो साल में बड़ी हो जाएगी, उसका उसके पति का पता ही नहीं है, शादी टूट गई थी। मैं उसके पति की खोज में गांव जाने की सोच रहा था और एक दिन निकला भी। होर्टी, पुराने निजाम प्रदेश का देहात। इस गांव में आज भी बिजली, बस या डाकघर नहीं है। नलदुर्ग के बाजार के दिन पोस्टमैन होर्टी को लोगों के पत्र बांटता। मैं जब पहुंचा तब पर्वत दादा खाट पर सोया था। मुझे देखा तो वह जग गया। वनी का पति वहां नहीं था। 10-12 साल का वह लड़का पता नहीं कहां भाग गया था। पर्वत दादा ने 4 और साथियों को इकट्ठा कर एक लंगड़े बैल को काटा था। मांस के लोथड़े ही लोथड़े, सभी ओर खून के छींटे, मक्खियों की भिनभिनाहट। मेरे लिए उसने बैल काटा था। इस बैल का मांस खत्म होने तक मैं तुम्हें वापस नहीं भेजूंगा, ऐसा वह कह रहा था। मैं आश्चर्यचकित हुआ, आखिर मैं कितना खाता। बैल काटकर उसके हिस्से डाले गए थे। दलित बस्ती के लोग आकर अपना अपना हिस्सा ले जा रहे थे। पर्वत दादा हिस्से बेच रहा था। रत्ना माया मांस पका रही थी। चालू लड़कियां मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं पके मांस के टुकड़े खा रहा था। कुछ दिनों बाद मैं वापस आने लगा तो मुझे विदाई देने के लिए पर्वत दादा काफी दूर तक आया। वह लगातार कुछ कर रहा था। काफी दूर जाने के बाद वह घाटी की ओर इशारा करके वह रजाकार के समय की यादें दोहराने लगा। उन दिनों होटी में मुसलमानों के घरों में जाकर हमने उन्हें पकड़ा। कुछ भाग गए, सबको पकड़कर इस मैदान में ले आए। बैल को काटते समय की छुरी तूने देखी है ना, उससे मैंने अपने हाथों से 11 मुसलमानों की गर्दनें धड़ से अलग कर दी थी। एक पंक्ति में सबको सुलाकर गर्दनें काटते और रात मुझे जला देते। मुसलमान औरतों का उपयोग गांव वाले रंडियों की तरह करते रहे। मुसलमान और हिंदू दोनों इस देश में जन्म ले चुके हैं। दोनों का खून लाल, पर दोनों के धर्म भिन्न। धर्म भिन्न इसलिए मनुष्य मनुष्य के खिलाफ उठता है, धर्म के लिए मार काट करता है, फसाद करता है, धर्म युद्ध करता है। पर मनुष्य के लिए उसके पास थोड़ी भी सी सहानुभूति नहीं थी। मनुष्य मनुष्य पर प्रेम क्यों नहीं करता? दोनों के बीच धर्म क्यों नहीं क्यों आता है? मनुष्य क्यों बंदिस्त हो जाता है रूढ़ियों और कर्मकांडों के बीच में? टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में मेरी नियुक्ति अहमदपुर में हो गई। अपनी शिक्षा मैंने अधूरी ही छोड़ दी। आर्थिक परेशानियों के कारण एमए न करते हुए मैंने नौकरी स्वीकार की। संता माई और दादा अब काफी वृद्ध हो चुके थे। मैं शादीशुदा था, मुझे अब अपने पैरों पर खड़ा होना जरूरी था। टेलीफोन विभाग में मुझे ऑपरेटर की नौकरी मिल गई थी, अहमदपुर में अर्थात मराठवाड़ा में। मराठवाड़ा नामांतर आंदोलन से धधक रहा था। मुझे भय महसूस होने लगा। नामांतर आंदोलन में किसी टेलीफोन एक्सचेंज विभाग को आग लगाई गई थी। पुलिस चौकी पर आक्रमण हुआ था। पुलिस फायरिंग में 2 मर चुके थे। वहां के विधायक के घर पर पत्थरबाजी हुई थी। सभी ओर भयावह वातावरण था। खासकर मराठवाड़ा में स्थिति विस्फोटक थी। फसाद शुरू हुआ था। दलित बस्तियां दिन दहाड़े जलाई जा रही थी, खून हो रहे थे। मराठवाड़ा बंद का आदेश भयावह लगता। महाराष्ट्र के सभी हिस्सों में लॉन्ग मार्च निकल रहे थे। दैनिक पत्रों में आगजनी और घर पकड़ की खबरें छप रही थी। रिपीट, धर पकड़ की खबरें छप रही थी। मराठवाड़ा का यह आंदोलन पूरे महाराष्ट्र में फैल रहा था। मेरे रक्त के एक एक कण में एक आंदोलन आकर धारण कर रहा था। इस आंदोलन के नए पत्ते सूर्य की तरह तेजस्वी थे। दलित सवर्ण के बीच तीव्र द्वेष उभर रहा था। अंततः सरकार को नामांतर का निर्णय पीछे लेना पड़ा। बापूराव जगताप जोगेंद्र कवाड़े का नेतृत्व प्रेरणादायी लग रहा था। दलितों को मिलने वाली सुविधाएं, शिक्षा के कारण उनमें उभरती अस्मिता व स्वाभिमान और इस नई अस्मिता से जीने वाले दलित समाज, आंदोलनों के कारण उभरने वाला विद्रोही युवक, नौकरियों के कारण सुखी जीवन जीने वाला अछूत, धर्मांतर के कारण थोपे गए कामों के प्रति उसकी अरुचि, इन विविध कारणों से सवर्ण हिंदू चिढ़ गए थे। हजारों वर्षों से कुत्ते बिल्लियों की तरह उनके पैरों के निकट गुलाम बनकर जीने वाला यह समाज उनकी बराबरी करने की कोशिश में था। स्वभावतः उसके इस परिवर्तन और अस्मिता को स्वीकार करने के लिए वे कतई तैयार नहीं थे। ऐसी स्थिति में मुझे अपनी जाति छिपाना जरूरी लगा। लिम्बाले कहने के बाद लोग मुझे लिंगायत समझते, लिंगायत मुझे झट से नजदीक लगते। मैं भी लिंगायत बस्ती में रहने लगा, शिव भजनों में रस लेने लगा। पहले ही सप्ताह में मैंने मित्रों को पत्र लिखा कि कृपया पत्र में जय भीम ना लिखा करो। मराठवाड़ा में तीव्र जाति भेद है, नामांतर के झगड़े अभी जारी हैं। पटेल, जोशी आदि उपनामों के मित्रों से पत्राचार शुरू किया। डॉक्टर आंबेडकर तस्वीरें पुस्तकें बक्से में बंद करके रख दी। खांडेकर के उपन्यास या जासूसी उपन्यास पढ़ने लगा। किसी दलित मित्र को अगर कहीं रास्ते में दूर से मैं देख लेता तो रास्ता काटकर दूसरे रास्ते से निकल जाता। अगर अचानक वह सामने आ जाता तो जय भीम कहने के पूर्व ही मैं उसे नमस्कार करता। मुझे अगर कोई जय भीम कहता तो मैं केवल हाथ जोड़ता। सवर्ण मित्रों के साथ घूमते समय कोई जय भीम कहता तो मैं खुद को उनमें पराया महसूस करता। अपनी असलियत के लिए पर्दाफाश का भय महसूस होता। मेरी खरी जाति का पता चल जाए तो लोग मुझे घर से बाहर कर देंगे, मुझे मारेंगे, मेरी पत्नी को सताएंगे। यह सोचकर मैं भयभीत होने लगा। साथ में बहन वनी भी थी। मुझे अपनी इज्जत का डर लगता। नौकरी छोड़कर भाग जाने की इच्छा होती। मैंने स्थानांतरण के लिए अर्जी दी पर कोई लाभ नहीं हो सका। मैं जाति छिपा कर जी रहा था। वह घर मुझे लाक्षागृह की तरह लगता। दादा और संता माय वनी को गांव में ले जाने के लिए आए। अब उसका विवाह जरूरी था। मैं वनी के लिए पति कहां और कैसे ढूंढता। मैं अक्करमासी इसके अलावा लिंगायत कहकर जी रहा था। संता माय दादा की दरिद्रता से मैं लज्जित था। संता माय को पता नहीं था कि मैं जाति छिपा कर रहता हूं और मांस खाने की गुंजाइश यहां नहीं है। शायद इसलिए वह हन्नूर से बैल का 2 किलो मांस ले आई थी। मैं बचपन में टांग की हड्डियां बड़े चाव से खाता था, वह उन्हें भी ले आई थी। यह सब देखकर मैं फ्यूज की तरह उड़ गया। मैंने तुरंत घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। संता माय पर मैं चिढ़ गया, पर संता माय मेरी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहने लगी, अरे बेटे, तुझे यहाँ पर सब चीजें खाने को नहीं मिलती, इसलिए मैं ले आई। कौन देख रहा है, हम भी तेरे साथ खा लेते हैं। मैं परेशान, कोई देख ले तो, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रात में हम लोगों ने मांस खा लिया। हड्डियां मैं बाहर फेंक आया, मानो आग से बाहर निकल आया। तनाव कम हुआ। सवेरे उठकर देखता हूं तो कुत्ते हड्डियां चबा रहे थे। कुत्ते मानो मुझे ही फाड़ कर खा रहे थे। संता माय दादा की एक और तकलीफ हमें होती। पति की मृत्यु के बाद संता माय माथे पर बिंदी नहीं लगाती थी, मंगल सूत्र भी नहीं पहनती। इस कारण वह विधवा लगती, पर साथ में दादा पति की तरह रहते। पड़ोस की स्त्री हम पत्नी कुसुम से उन दोनों की रिश्ता पूछती। एक पड़ोसन ने तो संता माई के लिए सिंदूर भिजवा दिया। भूतकाल से हम लज्जित हो जाते। महारोगियों के चक्तों की भांति हम इस भूतकाल को छिपा रहे थे। मेरे उपन्यास से इस मेरी जाति का पता नहीं लगता था, इसलिए लोग ससुराल का उपनाम पूछते। मैं ससुराल का नाम कांबले ना बताते हुए भोंसले या पवार या कुछ कह देता। दादा जब मुझसे मिलने आते तब पिता का आधार महसूस होता। उनमें और मुझ में धर्म बाधा कभी नहीं बना। कोई उनसे जाति पूछता तो वह कहते लिंगायत, मेरे लिए वह धर्म छिपाते। बस की यात्रा में मैं माँ अपने लड़के की सही उम्र छिपा देती है आधे टिकट के लिए, उसी प्रकार वह मेरे लिए अपनी धर्म छिपाते। धर्म का बोझ कुली की तरह हम ढो रहे थे, जाति बिरादरी का यह बोझ हम पर क्यों लादा गया? हम इसे क्यों नहीं निकाल फेंक सकते? जाति धर्म कुल खानदान इन सारे कृत्रिम बंधनों में हम मनुष्य और मनुष्यता को ही खोते जा रहे हैं। जब मैं अहमदपुर में था तब सीताराम गुट्टे नामक एक बुढ़िया घर मालिक मुझे मिला। उसके घर में हमें किसी बात की तकलीफ नहीं थी। यो सीताराम गुट्टे बहुत ही गुस्सैल आदमी था। उसकी पत्नी को हम घर के सभी सदस्य भाभी कहते। वो बहुत ममतामयी थी। मैं गुट्टे जी के बाड़े में रहने गया। उसने कभी जाति वृत्ति नहीं जतलाई। धीरे धीरे मैं भीमनगर जाने लगा। रोज अनेक पत्र आते। बहुत दिनों बाद हन्नूर का पत्र आया। पता चला कि चंदा माँ गुजर गई। कुसुम और मैं उस दिन रोते रहे। डॉक्टर बाबा साहब की जयंती उत्सव से मनाने का निश्चय हुआ। जयंती की मीटिंग का निमंत्रण मुझे मिला। मैं गया नहीं क्योंकि इसके एक दिन पूर्व ही कुछ लोग मुझसे मिलने आए थे। बातचीत हुई। उनका नेता कह रहा था, लिम्बाले साहब अपन सब बारहमासी, आपको शायद पता होगा कि निचली बस्ती के वे लोग अक्करमासी हैं। इस मीटिंग में आप उनकी ओर से मत बोलिएगा, अध्यक्ष हमारे गुट का ही होना चाहिए, अक्करमासी नहीं। इस विराट मूवमेंट को अगर यह पता चल जाए कि मैं भी अक्करमासी हूं तो इस समाज को पता चल जाए कि मैं जारत संतान हूं तो क्या मैं यहां भी नकारा जाऊंगा? क्या मैं अकेला ही हो जाऊंगा? डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का जुलूस निकला। दगडू बाघंबर जोर जोर से नारे लगा रहा था। बंसोड़े गुरुजी, धनसावा डीकर गुरुजी और कदम मामा जुलूस में घूम रहे थे। यह जुलूस विशुद्ध महारों का था, विशुद्ध खानदानी महार, और मैं इस पूरे जुलूस में मैं भ्रष्ट जारज खून वाला। मुझे हल्केपन का एहसास हो रहा है। भीम जन्मा सोमवंशी कुल में जैसे गीत पंक्तियां सुनकर मैं छटपटाता हूं। डॉक्टर अंबेडकर भी पूरे महार जाति के नहीं हैं, वे भी महारों में सोमवंशी कुल के हैं। इन सब में मैं कहां हूं? चक्रवात में फंसा मैं। जुलूस आगे निकला। स्त्रियां सबके पीछे थीं। आवेश में वे नारे लगा रही थीं। जुलूस के कारण मैं भी पूरे आवेश में था। खून में तूफान उभर रहा था। दो स्त्रियां अलबत्ता काफी चिंतित लगीं। एक को भूत प्रेत की बाधा हुई थी। नदी के पास कोई भूत उसे परेशान करता, रात में उसके साथ संभोग करता। वह नींद में परेशान हो जाती, चिल्लाती, पर भूत उसे छोड़ता नहीं था, उसे बेहाल करता। भूत की शरारत से वह चिढ़ गई थी। ओझा से गंडा डोरा बंधवा चुकी थी पर कोई फायदा नहीं था। जयंती का जुलूस आगे आगे निकलता। दलित युवक तनावग्रस्त थे। नामांतर के झगड़े अभी खत्म नहीं हुए थे। इस जुलूस पर कोई पत्थर तो नहीं बरसाएगा, इस विचार से मैं भीतर ही भीतर परेशान था, क्योंकि कल ही एक खबर पढ़ी थी कि ऐसे ही किसी जुलूस पर कहीं कीचड़ उछाला गया था। खबर में कहा गया है था कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा की अप्रतिष्ठा की गई थी। कारण इतना कि बाबा साहब की प्रतिमा दलितों के आत्मतीज का प्रतीक बन गई है। मेरे ससुर गुजर गए। कुसुम अंतिम क्रिया के लिए गई। मेरे जीवन का एक संत और एक खलनायक मिट्टी के नीचे चला गया। शराब के नशे ने उसे मार डाला। मेरा स्थानांतरण लातूर नामक कस्बे में हुआ। अहमदपुर के स्नेही जनों को छोड़ लातूर आना मुझे ठीक नहीं लग रहा था, पर नौकरी। लातूर आ गया, नए शहर में फिर निवास का प्रश्न। जाति बिरादरी शत्रु की तरह बाधा बन रहे थे। लातूर इतना बड़ा शहर, इतनी कोठियां, बंगले, चालें, पर मुझे कहीं कोई घर किराए पर नहीं मिल रहा था। मुसलमान और महारों को हम घर किराया किराए से नहीं देना चाहते, ऐसा कहा जाता। इस शहर को क्या आग लगा दें? इतना बड़ा शहर पर मुझे एक कमरा तक नहीं मिल जाता। प्रत्येक शहर जातिवादी, प्रत्येक गांव जातिवादी, प्रत्येक घर जातिवादी, प्रत्येक मनुष्य जातिवादी। जाति ने यहाँ के लोगों को भीतर से इतना तोड़ दिया है कि कहीं पर मनुष्य ही शेष नहीं है। घर घर में तुलसी का पौधा दिखता, बैठक में राम शंकर की तस्वीरें दिखती, ये लोग मुझे पराए लगते। ये बस्तियां भी पराई लगती। गले में लिंग तथा अथवा जनेऊ पहने हुए लोग मुझे अपने नहीं लगते। मेरे शरीर पर साफ सुथरे कपड़े हैं, मैं रोज साबुन से नहाता हूँ, टूथपेस्ट से दांत साफ करता हूँ, मुझ में कहीं पर भी अस्वच्छता नहीं है। फिर भी मैं अछूत क्यों? गंदा सवर्ण आदमी यहाँ स्पृश्य होता है तथा शुद्ध चरित्र का साफ रहन सहन वाला अछूत अस्पृश्य। जाति बिरादरी के रेवड़ों से बना हुआ यह शहर अपनी जाति की बस्ती में ही प्रत्येक व्यक्ति निवास चाहता है। लातूर में मुझे कहीं पर मकान नहीं मिला। उनके अनेक मित्रों को मैंने घर ढूंढने के लिए कहा, पर शहर में मकान मिलना संभव ही नहीं था। अंत में निराश होकर मैं भीमनगर में चला गया। वहां संडास नहीं, बाथरूम नहीं, स्त्रियां खुले में नहाती, खुले में पेशाब करती। भीमनगर में प्रवेश करते समय या वहां से निकलते हुए मैं शर्म महसूस करता। सवेरे और शाम सड़कों पर औरतें शौच के लिए बैठी होती, उनमें से गुजरते हुए मैं बहुत संकोच का अनुभव करता। इस बस्ती में अधिकतर रिक्शा चलाने वाले मजदूर और कुली ही रहते हैं। प्रतीक का उधर उसके हाथ पर, उधर ही उसके लिए सब कुछ, पेट की आग बुझाना ही उनके लक्ष्य का सीमा। इस बस्ती में मुझे जुगुप्सा होती है। इस बस्ती के संस्कारों से मैं दूर जाना चाह रहा था। मैं दलित ब्राह्मण हो चुका था, पर सवर्ण तो मुझे अपने पैरों के निकट भी नहीं आने दे रहे थे। भीमनगर या मुसलमानों की बस्ती, इनमें से किसी तीसरे पर मुझे जगह मिल ही नहीं सकती, तीसरा पर्याय ही नहीं। लातूर के भीमनगर का मतलब है शमशान भूमि। इस स्थान को मारवाड़ी शमशान भूमि कहा जाता है। पूरे शहर की लाशें यहां जलाई जाती हैं। सड़क पर स्थित इस शमशान भूमि कि दीवार पर किसी ने छप्पर डाल दिया है, किसी ने चार टीन। ऐसे ही चार टीन के तथा कथित मकान में मैं रह रहा था। घर के पीछे हमेशा प्रेत जलाए जाते। प्रेतों का जलना शुरू होता कि मकान की टीनों पर से धुआं गुजरता। कभी कभी दो दो तीन तीन प्रेत जलते जलते प्रेतों की दुर्गंध पूरी बस्ती में फैल जाती। खाना खाते समय किसी आत्मीय जन की आर्त और करुण आवाज सुनाई देती। घर के पीछे की यह शमशान भूमि मुझे चैन से सोने नहीं देती थी। मैं बेचैन हो जाता, खोपड़ी फटने की आवाज से जी घबरा जाता। मानसिक शांति नहीं थी। मेरी लड़की हमेशा बीमार रहने लगी। अस्मिता को जब बहुत बुखार चढ़ जाता तो मैं शमशान भूमि के पैर छूता। जगह ठीक नहीं, घर बदलना चाहिए, पर घर कहाँ मिलेगा? रात्रि के 12-1 बज चुके हैं, मुझे नींद नहीं आ रही, सिर फटा जा रहा है। भीमनगर गहरी नींद में होगा शायद। शमशान भूमि में शायद किसी की चिता जल रही है, पर मैं तो जीते जी जल रहा हूं। ऐसी एकाकी रात्रि में मैं न हस्त मैथुन कर सकता हूं और न रंडियों की कोठियों की ओर जाने की सोच सकता हूं। मैं देह के परे जा चुका हूं। मध्य रात्रि के समय जैसे सिद्धार्थ बाहर निकल चुका था वैसे मैं रोज बूढ़े व्यक्तियों को देखता हूँ, बीमारी से जर्जर, रोज की प्रेत यात्राएं, बाजों की आवाज, प्रेतों का जलना, रिश्तेदारों का रोना, मुझे सिद्धार्थ का गृह त्याग याद आने लगा। शाम के समय टीन की छत पर बैठ जाता हूँ। शमशान भूमि में चिता मंद गति से जल रही है। ससुर को भी ऐसे ही जलाया गया होगा। चंदा माय मिट्टी में घुल मिल गई होंगी। इस भीम नगर में नींद लेने वाले अनेक लोग हैं। झोपड़ियों को स्पर्श करती हुई यह सड़क, दूर से दिखलाई देने वाला यह घूरा। इस सुनसान मध्यरात्रि में मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं किसी प्रेषित की, किसी देवदूत की। कम से कम शमशान में स्थित कोई शरारती भूत तो आ जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता सिवा कुत्तों के भौंकने की आवाज के। मध्यरात्रि में पेशाब को उठी हुई वह पड़ोसन मुझे देखकर संकोच के साथ खड़ी है। इसका मुझे एहसास हो जाता, मैं नीचे उतर आता हूँ, घर के भीतर दरवाजा बंद कर लेता हूँ। घर है एक आदिम गुफा, मैं कसमसा रहा हूँ। निदान प्रातः काल में कोई एक स्वप्न दिखलाई दे। माया देवी को जैसे स्वप्न दिखाया था सिद्धार्थ के जन्म के समय।